दानियल अध्याय आठ। दो साल बाद दानियल अध्याय आठ पद एक। बेलशज़र राजा के राज्य के तीसरे वर्ष में उस पहले दर्शन के बाद एक और बात मुझ दानियल को दर्शन के द्वारा दिखाई गई। वैसा ही एक और दर्शन, दानियल अध्याय आठ पद दो और तीन। जब मैं एलाम नाम प्रांत में शूसन नाम राजगढ़ में रहता था, तब मैंने दर्शन में देखा कि मैं उलाई नदी के किनारे पर हूं। फिर मैंने आंख उठाकर देखा कि उस नदी के सामने दो सिंह वाला एक मेढ़ा खड़ा है। उसके दोनों सिंह बड़े हैं, परंतु उनमें से एक अधिक बड़ा है, और जो बड़ा है वो दूसरे के बाद निकला। मादी फारसी साम्राज्य का प्रतिनिधित्व दो सिंहों के द्वारा होता है। फारसियों का राज्य बड़ा राज्य था जो बाद में आया है, और वो मादी साम्राज्य से ज्यादा शक्तिशाली था। दानियल अध्याय आठ पद चार और पांच। मैंने उस मेडे या मादी फारसी साम्राज्य को देखा कि वो पश्चिम, उत्तर और दक्षिण की ओर सींग मारता है, और कोई जंतु उसके सामने खड़ा नहीं रह सकता, और ना उसके हाथ से कोई किसी को बचा सकता है, और वो अपनी ही इच्छा के अनुसार काम करके बढ़ता जाता है। मैं सोच ही रहा था तो फिर क्या देखा कि एक बकरा पश्चिम दिशा से निकलकर सारी पृथ्वी के ऊपर ऐसा फिरा कि चलते समय भूमि पर पाँव न छुआया, और उस बकरे की आंखों के बीच एक देखने योग्य सींग था। उसने इस मेढ़े को मादी फारसी साम्राज्य के रूप में बढ़ते हुए देखा, लेकिन तभी अचानक से एक बकरा पश्चिम दिशा यूनान से सिंह के साथ निकला, जो सिकंदर महान को दर्शाता है, और इतनी तेजी से आक्रमण करने और जीतने लगा कि उसके पांव जमीन पर नहीं छूते थे। आप सिकंदर महान के बारे में पढ़िए, कितने आश्चर्यजनक रूप से उसने उस समय के जगत को जीता था। दानियल अध्याय आठ पद छह से लेकर आठ तक। वो उस दो सिंह वाले मेढ़े के पास जाकर, जिसको मैंने नदी के सामने खड़ा देखा था, उस पर जलकर अपने पूरे बल से लपका। मैंने देखा कि वो मेढ़े के निकट आकर उस पर झुंझलाया और मेढ़े को मारकर उसके दोनों सिंहों को तोड़ दिया, और उसका सामना करने को मेढ़े का कुछ भी वश न चला। तब बकरे ने उसको भूमि पर गिराकर रौंद डाला, और मेढ़े को उसके हाथ से छुड़ाने वाला कोई ना मिला। तब बकरा अत्यंत बड़ाई मारने लगा, और जब बलवंत हुआ तब उसका बड़ा सींग टूट गया, और उसकी संति देखने योग्य चार सींग निकलकर चारों दिशाओं की ओर बढ़ने लगे। एक सजीव, सुचित्र, सुस्पष्ट भविष्यवाणी, अविश्वसनीय, रोचक भविष्यवाणी। पवित्र आत्मा की प्रेरणा के बिना दानियल ये सब कैसे जान सकता था कि वो बड़ा सिंह सिकंदर अपनी जवानी में ही टूट जाएगा। जब उसकी मृत्यु हुई थी उस समय उसकी आयु केवल 32 साल थी। यूनान का साम्राज्य उसके चार सेनापतियों में बट गया, सीरिया, मिस्र, एशिया माइनर और यूनान। दानियल अध्याय आठ पद नौ। फिर इनमें से एक छोटा सा सिंह एंटियोकस एपिफेनी निकला, जो दक्षिण, पूरब और शिरोमणि देश की ओर बहुत ही बढ़ गया। एंटियोकस एपिफेनिस दक्षिण में मिस्र की ओर गया था। सीरिया से मिस्र को जाते समय उसे इसराइल की भूमि से होकर जाना पड़ा था। दानियल अध्याय आठ पद दस। वो स्वर्ग की सेना तक बढ़ गया और उसमें से। अब हम एंटियोकस एपिफेनेस से मसीह विरोधी प्रवृत्ति की ओर अग्रसर होते हैं। वो स्वर्ग की सेना तक बढ़ गया, दानियल अध्याय 8 पद 10 से लेकर 14 तक। और उसमें से और तारों में से भी कितनों को भूमि पर गिराकर रौंद डाला, वरन वो उस सेना के प्रधान तक भी बढ़ गया और उसका नित्य होम बलि बंद कर दिया गया और उसका पवित्र वास स्थान गिरा दिया गया और लोगों के अपराध के कारण नित्य होम बलि के साथ सेना भी उसके हाथ में कर दी गई और उस सिंह ने सच्चाई को मिट्टी में मिला दिया और वो काम करते सफल हो गया। तब मैंने एक पवित्र जन को बोलते सुना, फिर एक और पवित्र जन ने उस पहले बोलने वाले से पूछा, नित्य होम बलि और उजड़वाने वाले अपराध के विषय में जो कुछ दर्शन देखा गया वो कब तक फलता रहेगा, अर्थात पवित्र स्थान और सेना का रौंदा जाना कब तक होता रहेगा। और उसने मुझसे कहा, जब तक सांझ और सवेरा 2300 बार ना हो तब तक वो होता रहेगा, तब पवित्र स्थान शुद्ध किया जाएगा। ये भी एंटियोकस एपिफेनेस के संदर्भ में भविष्यवाणी है। इसका पूरा होने के दो चरण हैं। वो एंटियोकस एपिफेनेस के द्वारा मंदिर को अपवित्र करने के बारे में बात कर रहा है। जब वो यरूशलेम में आया था तब उसने पवित्र स्थान पर सुअर का बलिदान चढ़ाकर परमेश्वर और उसके विश्वास के प्रति तिरस्कार का प्रदर्शन किया था। उसने मंदिर को मूर्ति पूजकों का मंदिर बनाना चाहा और इसकी वजह से यहूदी कट्टरपंथी इतना क्रुद्ध हो गए कि यहूदा मैकबियस ने लोगों के समूह को एकत्रित किया और प्रतिकूल परिस्थितियों के उपरांत भी यरूशलेम में आया और वहां जो सीरिया की सेना थी उसे हरा दिया। यही से समर्पण पर्व हनुका की शुरुआत हुई। वे मंदिर में सही और सच्ची आराधना को स्थापित करना चाहते थे और सबसे रोचक बात यह है कि इस पर्व की स्थापना एंटियोकस एपिफेनेस द्वारा मंदिर को अपवित्र करने के 2300 दिन बाद हुई, ठीक जैसा दानियल ने कहा था। ठीक 2300 दिन बाद यहूदा मैकबियस और ये विश्वासी कट्टरपंथी लोग आए। वे मंदिर में फिर से विधिवत बलि और आराधना स्थापित करना चाहते थे, परंतु वहां उनको एक दिन जलने लायक ही अभिषेक तेल मिला और इस अभिषेक तेल को तैयार करने में 7 या 8 दिन लगते थे। अतः वो तेल जो केवल एक ही दिन के लिए पर्याप्त था, परमेश्वर के चमत्कार द्वारा अगले 7 दिन तक चला, जब तक कि उन्हें और तेल नहीं मिल गया। इस प्रकार मंदिर में ज्योति जलती रही। हनुका के पर्व की स्थापना का यही इतिहास है। आज भी इस चमत्कार के प्रतीक स्वरूप वे 9 मोमबत्तियां जलाते हैं। यूहन्ना की पुस्तक के 10वें अध्याय में बताया गया कि यीशु मसीह हनुका के लिए यरूशलेम में था। ये पर्व जाड़ों के मध्य में आता है, जो लगभग बड़े दिन के आसपास होता है। इसे समर्पण का पर्व भी कहते हैं। ये यहूदा मैकबियस के इतिहास से संबंधित है, परंतु इसकी भविष्यवाणी पहले ही हो चुकी थी कि एंटियोकस एपिफेनेस के द्वारा मंदिर अशुद्ध या अपवित्र किया जाएगा और उसके परिणाम स्वरूप उसकी सफाई 2300 दिनों के बाद यहूदा मैकबियस के द्वारा हुई। इस प्रकार पवित्र स्थान 2300 दिनों तक अपवित्र रहा। मिलर नाम के एक व्यक्ति जो 19वीं शताब्दी में अमेरिका में एक सेवक थे, उन्होंने कहा कि 2300 दिन असल में 2300 वर्ष है, और उन्होंने यरूशलेम में मंदिर के अपवित्र किए जाने के दिन से 2300 वर्ष जोड़कर एक समय एक तारीख 1844 की निकाली और कहा कि यीशु मसीह इसी तारीख में आएगा। उनके साथियों ने सफ़ेद कपड़े या चोगे पहने और इलिनॉय की पहाड़ पर जाकर यीशु के आने का इंतज़ार करने लगे। उनको ऐसा दृढ़ विश्वास था कि उन्होंने अपना सारा सामान, घर, खेत, सब कुछ बेच दिया, और कुछ हफ्ते बाद जब मसीह नहीं आया तो ये समूह जो मिलरी कहलाता था टूटकर बिखर गया। परंतु तभी एक महिला जिसका नाम एलन जी वाइट था सामने आई और बोली, यीशु इस समय स्वर्ग में पवित्र स्थान को धो या साफ कर रहा है। अतः इस तरह उन्होंने सेवंथ डे एडवेंटिस्ट को बनाया और वे सब उसके लेखों का अनुसरण करने लगे जो कि असल में उसके लेख नहीं थे। ये महिला दूसरों के विचार या लेखों को अपने नाम का कहने वाली महिला थी और दूसरी पुस्तकों से नकल करती थी, जैसा कि कुछ लेखक आजकल प्रकट कर रहे हैं, और इस कारण में सेवंथ डे एडवेंटिस्ट को दुत्कार रहे हैं। वर्तमान समय में इस विशेष संस्था में एक बहुत बड़ा मंथन चल रहा है। परंतु कुछ भी हो, उन्होंने यहां से दानियल की ही भविष्यवाणी ली थी, परंतु 2300 दिनों को 2300 वर्ष में बदलने का कोई आधार नहीं है। ये बाइबल का उचित अनुवाद या टीका नहीं है। दानियल के लिए परमेश्वर सब कुछ प्रकट करता है। दानियल अध्याय 8 पद 15 से लेकर 17 तक। ये बात दर्शन में देखकर मैं दानियल इसके समझने का यत्न करने लगा। इतने में पुरुष का रूप धरे हुए कोई मेरे सम्मुख खड़ा हुआ दिखाई पड़ा। तब मुझे उलाई नदी के बीच से एक मनुष्य का शब्द सुन पड़ा जो पुकार कर कहता था, हे जब्रियेल, उस जन को उसकी देखी हुई बातें समझा दे। तब जहां मैं खड़ा था, जिब्राइल एक बहुत दिलचस्प स्वर्गदूत है, उससे मिलने में बड़ा मजा आएगा। हम उसे अध्याय 9 में मिलेंगे, तब उसके बारे में और बात करेंगे। ये वही है जो मरियम के पास आया था और कहा था कि उसका एक पुत्र होगा। वो जकरिया याजक के पास आया था और उसे बताया था कि उसकी पत्नी एलिसबेथ से एक पुत्र यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जन्म लेगा। उससे पूछा था, मैं ये कैसे जान सकता हूं? वो बोला, मैं जिब्रियेल हूं, मैं यहोवा की उपस्थिति में रहता हूं। क्या तुम सोचते हो कि मैं किसी इंसान से झूठ बोल सकता हूं? इस तरह वो बहुत दिलचस्प स्वर्गदूत है। यहां उसे आज्ञा दी जाती है, उस जन को उसकी देखी हुई बातें समझा दे। दानियल अध्याय 8 पद 17। वहां वो मेरे निकट आया और उसके आते ही मैं घबरा गया और मुंह के बल गिर पड़ा। तब उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, उन देखी हुई बातों को समझ ले, क्योंकि उनका अर्थ अंत ही के समय में फलेगा। ये दर्शन आपको अंत के समय में ले जाएगा। दानियल अध्याय 8 पद 18 से लेकर 20 तक। जब वो मुझसे बातें कर रहा था, तब मैं अपना मुंह भूमि की ओर किए हुए भारी नींद में पड़ा था, परंतु उसने मुझे छूकर सीधा खड़ा कर दिया। तब उसने कहा, क्रोध भड़कने के अंत के दिनों में जो कुछ होगा वो मैं तुझे जताता हूं, क्योंकि अंत के ठहराए हुए समय में वो सब पूरा हो जाएगा। जो दो सिंह वाला मेढ़ा तूने देखा है। हमें उस मेढ़े के बारे में कोई प्रश्न करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वो स्वयं हमें बता रहा है। दानियल अध्याय 8 पद 20 और 21। उसका अर्थ मादियों और फारसियों के राज्य से है और वो रोआर बकरा यूनान का राज्य है। ये तब की बात है जब यूनान कुछ नहीं था। दानियल अध्याय 8 पद 21 में आगे लिखा है, और उसकी आंखों के बीच जो बड़ा सिंह निकला वो पहला राजा ठहरा। सिकंदर महान ही पहला राजा था जिसने विश्व विजय अभियान चलाया था। सिकंदर के पिता फिलिप ने ना तो कोई विजय हासिल की और ना ही संसार पर विजय प्राप्ति करने की कोशिश आरंभ की थी। विजय की अभिलाषा में यही वो पहला राजा था। दानियल अध्याय 8 पद 22। वो सिंह जो टूट गया। सिकंदर 32 साल की उम्र में मर गया था। दानियल अध्याय 8 पद 22 में आगे लिखा है, और उसके बदले जो चार सिंह निकले, इसका अर्थ यह है कि उस जाति से चार राज्य उदय होंगे, परंतु उनका बल उस पहले का सा ना होगा। ये सच था और ऐसे ही हुआ भी। उनमें सिकंदर महान जैसे बल नहीं था। दानियल अध्याय 8 पद 23 और 24। उन राज्यों के अंत के समय में जब अपराधी पूरा बल पकड़ेंगे, तब क्रूर दृष्टि वाला और पहेली बूझने वाला एक राजा उठेगा। उसका सामर्थ बड़ा होगा और ये, जी हां, मसीही विरोधी के संदर्भ में है। दानियल अध्याय 8 पद 24 में आगे लिखा है, परंतु उस पहले राजा का सा नहीं। हम प्रकाशित वाक्य के 13वें अध्याय में पढ़ते हैं कि जब वो जंतु समुद्र में से निकला, तब शैतान ने उसे अपना अधिकार और शक्ति दी। अतः ये पाप का मनुष्य बड़ी अद्भुत शक्ति के साथ आएगा, परंतु ये उसकी अपनी शक्ति न होगी। ये शैतान का सामर्थ होगा जो उसे दिया जाएगा। शैतान का सारा सामर्थ इस मनुष्य को दिया जाएगा और ये मनुष्य बहुत सामर्थी होगा, परंतु अपनी स्वयं के सामर्थ्य से नहीं। दानियल अध्याय 8 पद 24 में आगे लिखा है, और वो अद्भुत रीति से लोगों का नाश करेगा और सफल होकर काम करता जाएगा और सामर्थियों और पवित्र लोगों के समुदाय को नष्ट करेगा। अतः वो इसराइल से युद्ध करेगा। दानियल अध्याय 8 पद 25। उसकी चतुराई के कारण उसका छल सफल होगा और मन में फूल कर निरर रहते हुए बहुत लोगों का नाश करेगा। आरंभ में तो वो शांति की योजना लेकर आएगा और सचमुच में संसार के उद्धारकर्ता के रूप में दिखाई देगा। दानियल अध्याय 8 पद 25 में आगे लिखा है, वो सब हाकिमों के हाकिम के विरुद्ध भी खड़ा होगा, परंतु अंत को वो किसी के हाथ से बिना मार खाए टूट जाएगा। यीशु मसीह की महिमा और यीशु मसीह के मुंह से निकलने वाले शब्द से मसीह विरोधी मारे बिना ही नष्ट हो जाएगा। दानियल अध्याय 8 पद 26। सांझ और सवेरे के विषय में जो कुछ तूने देखा और सुना है वो सच है, परंतु जो कुछ तूने दर्शन में देखा है उसे बंद रख, क्योंकि वो बहुत दिनों के बाद फलेगा। इसे बंद कर दो, क्योंकि ये भविष्यवाणी भविष्य के लिए दी गई है। दानियल अध्याय 8 पद 27। तब मुझ दानियल का बल जाता रहा और मैं कुछ दिन तक बीमार पड़ा रहा। तब मैं उठकर राजा का काम काज फिर करने लगा, परंतु जो कुछ मैंने देखा था उससे मैं चकित रहा, क्योंकि उसका कोई समझाने वाला ना था। उसने इसे सिर्फ लिख लिया था, कोई इसे ना समझा सका। ये निश्चय ही एक रोचक बात है, पर मैं इसे नहीं समझता। आप जानते हैं ये विचित्र और भयंकर है, परंतु सब कुछ ऐसा ही था। अब हम इसे देखते और कहते हैं, वाह ये कितना साफ है। वो इन बातों को जो अभी घटी नहीं है इतनी सफाई से कैसे लिख सकता था। आज हम इस भविष्यवाणी को सरल और सुबोध आसान कह सकते हैं, क्योंकि हम आज के समय में हैं जबकि सब कुछ भविष्यवाणी के अनुसार ही घटता जा रहा है। परंतु दानियल के लिए कौन यूनान? भाई साहब, वो छोटा सा अनजान देश कैसे फारसियों के साम्राज्य का अंत कर सकता था? परंतु समय की परिपूर्णता में ऐसा ही हुआ। दानियल की पुस्तक के 9वें अध्याय का जब हम अध्ययन करेंगे तो मेरे विचार में इस भविष्यवाणी को समझने की कुंजी वहां है। यदि आप दानियल की पुस्तक के 9वें अध्याय को समझ लेंगे तो इस भविष्यवाणी का पूरा विषय आपके लिए एकदम स्पष्ट हो जाएगा। यदि आप भविष्यवाणी की पुस्तक के 9वें अध्याय को समझ लेंगे तो आप इसकी भविष्य संबंधी तस्वीर को देखने में सक्षम हो जाएंगे। हम 9वें अध्याय को समझने में पर्याप्त समय लगाएंगे, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप समझ की इस कुंजी को ग्रहण करें, क्योंकि इस अध्याय को पूरी तरह समझ लेने पर यह भविष्यवाणी आपके लिए दुर्बोध या अस्पष्ट नहीं रहेगी। परमेश्वर आपके साथ हो। परमेश्वर के साथ और एक दूसरे के साथ हम अपने संबंधों में बढ़ते जाएं। परमेश्वर ने आपसे ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र आपके लिए दे दिया, इसलिए आपके जीवन से हमेशा परमेश्वर की महिमा होने पाए और आप उसके और करीब आते जाएं। एक दूसरे से परमेश्वर का आनंद बांटने में और परमेश्वर की शांति को अनुभव करने में तत्पर रहें। पृथ्वी पर शांति और मेल व्याप्त हो, संसार में शांति और मेल मिलाप बना रहे।